नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अपर्णा सिंह। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खाड़ी देशों के साथ सरकार के मजबूत संबंध कठिन समय में वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा में सहायक है। पश्चिम एशिया में एक साथ कई मोर्चों पर हमले होने से संघर्ष और तेज हुआ। रूस यूक्रेन के बीच हमले में 10 लोगों की मौत और कई अन्य घायल। पाकिस्तान में भय और असुरक्षा के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के पलायन जारी। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया। एक अन्य मैच में राजस्थान रॉयल्स ने अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस को 211 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीयों, विशेष रूप से केरल के लोगों की सुरक्षा उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री मोदी आज तिरुवल्ला में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों के साथ सरकार के मजबूत संबंध कठिन समय में वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा में सहायक हैं।
गल्फ कंट्रीज के नेताओं से मैं लगातार संपर्क में हूं, वहां की सरकारों से हम लगातार बात कर रहे हैं। मैं आप सभी परिजनों को आश्वस्त करता हूं, आपके परिवारजन भले ही आपसे दूर हो लेकिन वो अकेले नहीं है। भारत सरकार इन देशों में रह रहे हर भारतीय के साथ है।
पश्चिम एशिया में एक साथ कई मोर्चों पर हो रहे हमले से संघर्ष और तेज हो गया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने आज होर्मुज जल डमरू मध्य में इसराइल से संबद्ध एक जहाज को निशाना बनाकर आग लगा दी। एक रिपोर्ट।
युद्ध शुरू होने के बाद से बुशहर संयंत्र पर आज चौथी बार हमला हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसकी सुरक्षा के प्रति अंतर्राष्ट्रीय चिंता की कमी की आलोचना की। रूस की सरकारी परमाणु निगम रोसाटॉम ने अब कर्मचारियों को निकालने का अंतिम कार्य शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि परमाणु संयंत्र स्थलों पर कभी भी हमला नहीं किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि संयंत्र का मुख्य ढांचा बरकरार है और बिजली उत्पादन बाधित नहीं हुआ है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार से।
इस बीच सीरिया के दमिश्क में संयुक्त अरब अमीरात दूतावास पर प्रदर्शनकारियों के हमले में परिसर को नुकसान पहुंचा है। उधर लगातार बढ़ते संघर्ष के बीच संयुक्त अरब अमीरात की वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान की 23 बैलिस्टिक मिसाइलों और 56 ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। इस बीच पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बावजूद देश में सोने की कीमतें दबाव में रहीं और रिकॉर्ड ऊंचाई से लगभग 17% रहीं। घरेलू स्तर पर सोने की कीमतें 1,49,650 रुपये प्रति ग्राम पर बंद हुईं, जबकि वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतें सप्ताह के अंत में बढ़ीं। मजबूत डॉलर, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और उच्च ब्याज दरों के जारी रहने की आशंकाओं के कारण सोने की कीमतों में वृद्धि कम रही। इससे सोने की मांग के बावजूद बाजार में अस्थिरता बनी रही। उधर ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के युद्ध विराम के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच तेहरान का रुख और कड़ा हो गया है और क्षेत्र में और अधिक अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। क्यूबा ने मानवीय आधार पर बंदियों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमेरिका की ओर से लगातार बने दबाव के बीच उसने कहा है कि 2,000 से अधिक बंदियों को रिहा किया जाएगा। पूर्वी हवाना के ला लिमा कारागार से 20 से अधिक बंदियों को रिहा किया गया। अमेरिका में क्यूबा के दूतावास ने बताया कि 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के अलावा महिलाओं और विदेशी नागरिकों को भी रिहा कर दिया जाएगा। ये पिछले 10 वर्षों में सबसे बड़ी सजा माफी है। बलूचिस्तान में मानवाधिकार संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैश्विक समुदाय से प्रांत में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति पर तत्काल ध्यान देने की अपील की है। बलोच यकजहती कमेटी BYC ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने एक और बलोच छात्र की हत्या कर दी है। संगठन ने कहा कि 18 वर्षीय छात्र गुलाम कादिर का शव ग्वादर जिले के पलारी इलाके में मिला। ये छात्र लगभग 4 महीने पहले लापता हो गया था। इस क्रूर घटना की निंदा करते हुए BYC ने कहा कि बलूचिस्तान में लगातार जारी हिंसा को दर्शाता है। इस क्षेत्र में जबरन लापता किए जाने, हत्याओं और लक्षित हमलों के बाद हर रोज बलोच व्यक्तियों के शव मिलते हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच आज रात हुए हमलों में 10 लोग मारे गए। दोनों देशों के अधिकारियों ने बताया कि इन हमलों में दर्जनों लोग घायल हैं। ये हमले ऐसे समय हुए जब यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के साथ बातचीत के लिए इस्तांबुल गए थे। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने रात भर में 286 ड्रोन दागे, जिसमें से 260 ड्रोन उसने मार गिराया। निप्रो पेत्रोव्यस्क क्षेत्र के निकोपोल में 5 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। वहीं सुमी में 11 अन्य घायल हुए। कीव में एक ड्रोन हमले में 3 मंजिला कार्यालय और गोदाम की इमारत में आग लग गई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। डोनेट्स क्षेत्र में एक ड्रोन हमले में एक महिला की भी मृत्यु हो गई। रूस के अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेनी हमलों में 4 लोग मारे गए। उन्होंने बताया कि रूस की वायु रक्षा प्रणाली ने रात भर में 85 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। पाकिस्तान में भय और असुरक्षा के कारण ईसाई, हिंदू और अन्य समुदायों सहित अल्पसंख्यक आबादी का लगातार पलायन हो रहा है। 1947 से पूरे पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को सामाजिक पूर्वाग्रह, संस्थागत भेदभाव और लक्षित हिंसा सहित अत्याचारों का सामना करना पड़ा है। एक रिपोर्ट।
अमेरिका स्थित ग्लोबल स्ट्रेट व्यू की रिपोर्ट के अनुसार जबरन धर्मांतरण, कम उम्र में विवाह और कानूनी सुरक्षा में असंगति के कारण अल्पसंख्यक बालिकाएं ये सवाल पूछने पर मजबूर हैं कि क्या संविधान वास्तव में उनके अधिकारों की रक्षा करता है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाओं ने आधी अधूरी जवाबदेही के चिंताजनक परिदृश्य को उजागर किया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मार्च में नाबालिग ईसाई लड़की मारिया शहबाज के मामले में पाकिस्तान के संघीय संवैधानिक न्यायालय के हालिये फैसले ने मौजूदा कमजोरियों को उजागर किया, जब न्यायालय ने उसके विवाह को बरकरार रखा और उसकी वापसी की याचिका को खारिज कर दिया। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में आए 5.9 तीव्रता के भूकंप में 8 लोगों की मृत्यु हो गई। अफगानिस्तान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ हमाद ने बताया कि काबुल प्रांत में एक मकान गिरने से ये मौतें हुई। भूकंप का केंद्र जमीन से 186.4 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। इसके तेज झटके काबुल में भी महसूस किए गए। मंगोलिया में नवनियुक्त प्रधानमंत्री न्याम ओसोर उचराल के नेतृत्व में आज नई गठबंधन सरकार ने राजधानी उलान बटोर के राजकीय महल में शपथ ली। अहमदाबाद में IPL T20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 211 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 9 ओवर में 1 विकेट पर 86 रन बना लिए हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने आज मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया। मुंबई के 163 रन के लक्ष्य को दिल्ली ने 11 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। समीर रिजवी को 90 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खाड़ी देशों के साथ सरकार के मजबूत संबंध कठिन समय में वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा में सहायक हैं। पश्चिम एशिया में एक साथ कई मोर्चों पर हमले होने से संघर्ष और तेज हुआ। रूस यूक्रेन के बीच हमले में 10 लोगों की मौत और कई अन्य घायल। पाकिस्तान में भय और असुरक्षा के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के पलायन जारी। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया। एक अन्य मैच में राजस्थान रॉयल्स ने अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस को 211 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।